તારીખ 5/9/1995 પૂજ્યબેન શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 171 અને 416 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 351
ધર્મ હોય દૂસરા કોઈ ધર્મ નહીં હૈ ધર્મ કી વ્યવસ્થા મેં એક સાથ સભી ધર્મ હોતે હૈ એક વિતરાગ ભાવ રૂપ ધર્મ કે પર્યાય મેં સભી ધર્મ એક સાથ હોતે હૈ ઓર એક દિવસ કો એક હી ધર્મ તો બાત કરતે હૈ ઇસલિયે એક ધર્મ હૈ એસી બાત નહીં હૈ પરંતુ એક સાથ સમૂહ કા કથન નહીં હો સકતા હૈ ઇસલિયે ક્રમ સે એક એક ધર્મ કો કહેને કી પદ્ધતિ હૈ સમ્યક દર્શન પૂર્વક આત્મા કા વિતરાગ ભાવ મેં સભી ધર્મ રહા હુઆ હૈ ઉત્તમ મેને સમ્યક જિસે આત્મા કી સચ્ચી પહેચાન ન હો ઉનકો તો એક ભી ધર્મ નહીં હોતા ન ઉસકો ક્ષમા હોતે હૈ કે ન ત્યાગ હોતા હૈ ન તપ હોતા હૈ ઉત્તમ ક્ષમા જો ધર્મ હૈ વો સમ્યક ચારિત્ર કે ભેદ હૈ ઓર મુખ્ય રૂપ સે મૂળ દશા મેં ઇસ ધર્મ કી બાત આચાર્ય શ્રી ને કી હૈ શ્રી પદ્મનંદે આચાર્ય ઉત્તમ તપ ધર્મ કા વર્ણન કરતે હૈ 98 નંબર કે શ્લોક મેં કર્મ મલ વિલય હેતુ બોધ દશા તપ્યતે તપઃ પ્રોક્તમ તદ્વેધા દ્વાદશા દ્વાદશતા જન્મ અંગો ધ્યાન શાસ્ત્ર નિદન સમ્યક દર્શન ઓર સમ્યજ્ઞાન પૂર્વક ઉત્તમ તપ વે સંસાર સમુદ્ર સે પાર હોને કે લિયે જહાજ સમાન હૈ પહેલે તો તપ કિસે કહેતે હૈ તપ કી પરિભાષા એસી હૈ તપ્યંતે ઇતિ તપઃ इसको तपायमान करते हैं स्वरूप में एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है बहुत लीनता होती है उसको तप कहते हैं जैसे सुवर्ण आदि धातु को और तपाने से उनकी शुद्धि होती है और उनका तेज बार आता है वैसे आत्मा स्वरूप में लीन होता है तो उसका चैतन्य तेज बाहर आता है तो तप का दूसरा अर्थ शास्त्रों में तेज भी किया है तप माने तेज ऐसा तप वितराग भाव रूप है स्वरूप में लीनता रूप है फिर अनेक प्रकार के जो तप बोलने में आते हैं तो निर्विकलता होने के पूर्व उस प्रकार के विकल्प होते हैं उसका नाम दिया जाता है सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से वस्तु स्वरूप को जान करके उसमें लीन होते ही इच्छा स्वयं बंद हो जाती है यानी इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती उनको तप कहते हैं तप की व्याख्या उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र में ऐसी कही है इच्छा निरोध तप इच्छा का स्वयं बंद हो जाना इच्छा का स्वयं उत्पन्न नहीं होना उसको तप कहने में आता है और ऐसे तप से निर्जरा होती है तपसा निर्जराचा बाकी शुद्धाव रूप तप शुद्धाव रूप विकल्प होता है उससे कोई निर्जरा नहीं होती उससे तो शुभ बंद होता है इच्छा स्वयं बंद हो जाती है यह तप है कर्म मिलता उससे नाश होता है, जिस भाव से शुभ या अशुभ कर्म बंधते हैं वो वास्तव में तप नहीं है, परंतु जिस भाव से ज्ञान दर्शन की शुद्धि प्रकट हो और कर्म का क्षय हो उसको तप कहने में आता है। यह तप आत्मा का वितराग चारित्र है। ऐसा जो तप है वो आत्मा का वितराग चारित्र है। निश्चय से तो वितराग भाव रूप एक ही प्रकार का तप है। तप का प्रकार निश्चय से तो एक ही है, जो वितराग भाव रूप है। ऐसा निश्चय तप की पहचान पूर्वक जब लोग पूर्ण वितराग भाव न हो तब लोग शुभाग रूप व्यवहार तप होते हैं और वो व्यवहार तप का सामान्य रूप से दो भेद है, एक बाह्य तप और एक अभ्यंतर तप। तथा विशेष रूप से बाह्य तप का 6 प्रकार है और अभ्यंतर तप का भी 6 प्रकार है। ऐसे 12 प्रकार का तप बोलने में आता है, तो उसका भी यहाँ 12 भेद का नाम दिया है। अनशन अवनोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 बाह्य तप है। प्रायश्चित विनय वैयाव्रत विसर्ग स्वाध्याय और ध्यान ये अभ्यंतर तप है। इस प्रकार के बाह्य और अभ्यंतर तप के 12 भेद है।
विनय को तप में लिया,
हाँ विनय को भी तप में लिया है और स्वाध्याय को भी तप में लिया है और दोनों को अभ्यंतर तप में लिया है, विनय को भी तप में लिया है। वरना क्या करेंगे, हम रोज स्वाध्याय करते तो हम रोज तप करते हैं, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन पूर्वक उत्तम तप तो कभी होता है, व्यवहार कब होता है कि निश्चय होता है तब। खास एक स्वरूप लीनता का वो भी एक विकल्प में पूर्व विकल्प आता है। स्वरूप लीनता के पहले पहले ऐसे प्रकार के विकल्प आते हैं, इसलिए
तो गुरु के प्रति,
हाँ देव गुरु शास्त्र के प्रति।
तब क्या
वो लीनता का कारण बनता है। ज्ञानी को ज्ञानी को पहले ऐसे विकल्प आता है और बाद में लीनता आती है, तो उसका नाम दिया जाता है तब को विनय का नाम दिया जाता है, पूर्व विकल्प अनुसार नाम दिया जाता है। यह खास ध्यान में रखना कि ये सभी प्रकार के तप सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद ही होता है, इसके पहले नहीं होता है। सम्यक दर्शन बिना काय क्लेश के अनशन के स्वाध्याय कुछ भी करे उसको निश्चय से या व्यवहार से किसी भी प्रकार से तब कह सकते
नहीं है,
उसको नहीं कह सकते। उत्तम तप यह सम्यक चारित्र का भेद है। सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन बिना होता नहीं कभी। पुण्य और पाप रूप कोई इच्छा आत्म स्वभाव में तो है नहीं। इच्छा रही निरीक्षक निर्मल चैतन्य स्वरूप को पहचान करके उसके अनाकुल आनंद के अनुभव में लीन होने से वितराग भाव से आत्मा की शोभा निखरती है, उसका तेज निखरता है, उसी का नाम तप है और यही तप मुक्ति का कारण है। ऐसा तप मुक्ति का कारण है, ऐसा तप निर्जरा का कारण है और ऐसा तप मुक्ति का भी कारण है। अभी जो संप्रदाय में सम्यक दर्शन बिना अनशन उपवास आदि जो करते हैं उनको तप मानते हैं, वो वास्तव में तप नहीं है। फिर भी ऐसी जो मान्यता है वो क्या है, वो गृहित मिथ्यात्व है। क्या? बुद्धि पूर्वक नया ग्रहण किया हुआ मिथ्यात्व है। ऐसा मानना, किसी को मनाना और कोई मानता है इसका अनुमोदन करना, तीन को गृहित मिथ्यात्व लागू पड़ जाता है। हाँ, अनुमोदन करने वाले को थोड़ा तकलीफ ज्यादा होता है, बाकी फल तीनों का एक सा है। अनुमोदन करने वाले को अभिप्राय पूर्वक होता है तो उसको छूटना मुश्किल होता है, ऐसा बनता है। इसलिए हमारे यहाँ भी उपवास करते हैं और फिर इसके बाद जो संप्रदाय में जैसे पालना उसका जो भी उद्यवान है उसका करता है ना, खुशी मनाते हैं, भोजन करते हैं, वो करते हैं, सब प्रकार के व्यवहार करते हैं, एक गृहित मिथ्यात्म में जाने का अपराध होता है उसमें, तो ऐसा करना चाहिए नहीं। उसको करना, कराना और अनुमोदन करना। तकलीफ कहाँ होती है कि सभी संधि में जब ऐसा होता है और आमंत्रण देते हैं या मुमुक्षु मुमुक्षु में ऐसा होता है और जो मुमुक्षु ना समझ है, समझते नहीं है, जिसको स्वाध्याय सत्संग नहीं है वो तो समझते नहीं है, आते जाते तो है मंदिर में, पूजा भक्ति करते हैं लेकिन स्वाध्याय सत्संग नहीं है तो समझते नहीं है, तो वो भी उपवास आदि करते हैं, उनको तप मान लेते हैं और फिर इसका सब प्रकार का जो संप्रदाय में होता है ऐसा सब करने लग जाते हैं, तो वहां अपने को अनुमोदन करना कि नहीं करना, करना चाहिए
नहीं,
नहीं। अगर गृहित मिथ्यात्व से बचना हो तो, वरना वो तो गृहित मिथ्यात्व में पड़े हैं, अनुमोदन करने वाले भी गृहित मिथ्यात्व में आ जाएंगे।
ऊपर ऊपर से करें तो क्या बाधा, ऊपर ऊपर से करें खाली,
ऊपर ऊपर से क्यों करें फिर, ऊपर ऊपर से करने का क्या कारण है, जो गृहित मिथ्यात्व का अपराध है तो ऊपर ऊपर से करने का कारण क्या है, जोर पीना नहीं लेकिन ऊपर ऊपर से चख लेना, क्यों, इसमें क्या बाधा है, थोड़ा सूंघ लेना, चख लेना या कुछ लगा देना इधर, ऊपर ऊपर से ज्यादा नहीं करना, वहां तो ऊपर ऊपर से कुछ नहीं करते, क्यों जोर का प्रयोग ऊपर ऊपर से क्यों नहीं करते, वो तो एक बार मारेगा, एक गृहित मिथ्यात्व है वो अनंत बार मारेगा, वो तो इससे बड़ा जोर है, तो गृहित मिथ्यात्व से तो दूर रहना। ठीक प्रश्न उठाया, गृहित मिथ्यात्व अंदर से आएगा तो ऊपर ऊपर से आएगा, गृहित मिथ्या तो अंदर से आएगा, ये बात है। क्या करने से, उपवास करने से, नींद लेना कि नहीं लेना, नींद लेते हैं पूजा भक्ति करके सो जाते हैं,
तुलसी से भी लेते हैं,
अच्छा अच्छा, तो अपन पाप छोड़ करके पुण्य करते हैं इसकी गिनती करते हैं, लेकिन मिथ्यात्व में गृहित मिथ्यात्व बड़ा हो जाता है इसकी गिनती क्यों नहीं करते हैं, सवाल वो है, पुण्य पाप की गिनती जल्दी से हम कर लेते हैं लेकिन मिथ्यात्व की गिनती क्यों नहीं करते हैं,
तो
पाप का बाप है, बहुत पाप यहाँ से पैदा होते हैं, इसका क्या,
वो तो उसकी मान्यता है, वो तो उसकी मान्यता, अपन ये समझते हैं कि वो पाप छोड़ के पुण्य में आए,
कौन कौन मानते हैं,
जिसने व्रत किया है वो तो उसकी मान्यता है कि वो उसको धर्म मानता है, अपन तो ये समझे कि वो पाप छोड़ के पुण्य में आए,
नहीं अपने को भी ऐसा नहीं समझना, पाप छोड़ के पुण्य में आया ऐसा नहीं है, वो क्या मानता है वो पहली बात है। पाप पुण्य को मुख्य नहीं करो, मान्यता को मुख्य करो। क्या पाप पुण्य को मुख्य नहीं करना चाहिए, मान्यता में क्या होता है वो पहले देखो, समझ में क्या होता है वो पहले देखो। पहले श्रद्धा ज्ञान की मुख्यता कैसे, सब बात को विचार करना, कोई भी बात का विचार करना हो तो श्रद्धा ज्ञान की मुख्यता से करना। अपने गुरुदेव ने तो वो समझाया है, श्रद्धा ज्ञान की मुख्यता करने का समझाया है, पुण्य पाप की मुख्यता करने का गुरुदेव ने नहीं समझाया। वो हमेशा गौ करते थे, पाप को भी तो गौ करते थे, पुण्य को भी गौ ही करते थे। नहीं, उसको उसको सच्ची समझ होनी चाहिए। पुण्य छोड़कर, पाप छोड़ करके पुण्य करने को तो आया नहीं, ऐसा वजन नहीं देना।
अपनी
बस ठीक, सही बात बोलना, सही बात समझाना, अगर कोई आता है तो वो भी समझना चाहे तो अपनी बात किसी पे थोपना नहीं है। उसको समझना हो या समझने का भाव हो, आगे जाकर समझने की जरूरत हो तो समझाना, वरना समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपन को समझना, दूसरों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलते प्रकरण में बहुश्री के वचनामृत, वचनामृत 171। मेरे हिंदी प्रति में पेज नंबर 60 है, 60, गुजराती में 52 नंबर का पेज है। एक ज्ञान में दो तरवारें नहीं समा सकती। तरवार का जो ज्ञान होता है उसमें एक ही तरवार रहती है, दूसरी तरवार की कोई जगह नहीं है। दूसरी चीज तो नहीं रहती लेकिन दूसरी तरवार भी नहीं रहती, ऐसे वो दृष्टांत है। वैसे सिद्धांत में चैतन्य की महिमा और संसार की महिमा वो एक साथ नहीं रह सकता, दो महिमा एक साथ रहती नहीं है। आत्मा की जो महिमा है और संसार भाव और संसारिक पदार्थ की भी महिमा हो, तो महिमा एक साथ रहने वाली नहीं है। जीव को अनादि से संसार की महिमा है, अपने पास कुछ नहीं होगा तो दूसरे की महिमा करेगा, देखो उसके पास वो है, दूसरे पास वो है, अमेरिका में वो है, फलाने जगह वो है। ये संसार की महिमा है, उसको चैतन्य स्वरूप की महिमा नहीं आएगी। संसार में पुण्य के फल की महिमा है, पदार्थ है वो पुण्य के फल है, उसकी महिमा है, उसको जड़ की महिमा है, उसको चैतन्य की महिमा नहीं आएगी। पुण्य के फल के कारण पुण्य भाव है, इसकी महिमा जिसको आएगी उसको भी चैतन्य की महिमा नहीं आएगी। आगे जाकर के ले लें कि जिसको सूक्ष्म ज्ञान की महिमा है, जिसको बाह्य त्याग की महिमा है, उसको भी बाह्य ज्ञान और बाह्य त्याग की महिमा वाले को अंत तत्व की महिमा नहीं आएगी। यहां तक ले लेना, तो सब संसार के कारण रूप संसार के परिणाम है। चैतन्य की महिमा और संसार की महिमा दो एक साथ नहीं रह सकते, और जिसको चैतन्य की महिमा आई उसको न तो बाह्य ज्ञान की महिमा आएगी, बाह्य त्याग की महिमा आएगी, न पुण्य की महिमा आएगी, न पुण्य के फल की महिमा आएगी, किसी की महिमा नहीं आएगी। कुछ भी मात्र क्षणिक वैराग करते हैं, कितने भी धर्म के क्षेत्र में आकर के ऊपर ऊपर से क्षणिक वैराग्य करते हैं कि संसार अशरण है, संसार अनित्य है, उन्हें चैतन्य की समीपता नहीं होती, उनको चैतन्य की आत्मा की समीपता नहीं होती। क्या कहना चाहते हैं कि धर्म कार्य है वो ऊपर ऊपर के परिणाम से होने वाला नहीं है, उसकी गहराई में जाना पड़ता है। ऊपर ऊपर से कोई क्षणिक वैराग आ जाए, ऊपर ऊपर से स्वाध्याय चिंतन करे, ऊपर ऊपर से स्वरूप की महिमा करे, ऊपर ऊपर से भावना करे, ऊपर ऊपर से जिज्ञासा करे, अनेक प्रकार के परिणाम जो है वो ऊपर ऊपर से होता है, पर अंदर में संसार की महिमा भरी हुई है, उनको आत्मा की समीपता नहीं होती, अनुभव तो नहीं होता, निकटता भी नहीं होती, समीपता भी नहीं होती। अनुभव की बात तो दूर की है, परंतु चैतन्य की महिमा पूर्वक जिसे विभावों की महिमा छूट जाए, चैतन्य की कोई अपूर्वता लगने से संसार की महिमा छूट जाए, वो चैतन्य के समीप आता है। क्या कहते हैं, परंतु चैतन्य की महिमा पूर्वक जिससे विभावों की महिमा छूट जाए, कोई विभाव की महिमा नहीं आया। देखो आज स्वाध्याय किया तो हमको शांति मिली, एक घंटा स्वाध्याय करते हैं तो शांति रहती है। तो कौन सी शांति है, विभाव की है या स्वभाव की है, किसकी है? जिसको विभाव की महिमा आई उसको आत्मा की महिमा नहीं है।
संसार असरण अनित्य है,
हाँ?
संसार असरण अनित्य है, ऐसा जनरली विजुलाइज होता है, जनरली विजुलाइज होता है। उस समय में ये जो अपूर्वता नहीं आता है, उस समय में कैसा भाव करना चाहिए जिसमें अपूर्वता आवे, अपने स्वभाव का अपूर्वता आवे? इसमें जनरली ये होता है कि संसार असरण है, चलता है, अंदर में जाने के लिए जो एक प्रयास होना चाहिए वो किस तरह से प्रयास होना चाहिए, इसे अंदर में जाए
ऐसा लगना चाहिए। विचार में आता है उसमें क्या, चैतन्य की कोई अपूर्वता लगने से संसार की महिमा छूट जाए, तो कब लगेगा कि भाव भाषण होगा तब लगेगा।
भाव भाषण के लिए अवलोकन, बारंबार अवलोकन करने का,
हाँ,
प्रयास,
अवलोकन से भाव भाषण आता है,
दूसरा कोई
उपाय नहीं है। भाव भाषण आने का अवलोकन के बिना कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अवलोकन में अनुभव क्या होता है, हमको क्या लगता है, इसका अभ्यास, इसका डीप स्टडी होता है। अवलोकन की प्रैक्टिस में हमको लगता क्या है, इसका अभ्यास होता है, अंधा अभ्यास होता है, इसलिए यहां से भाव भाषण होता है। इसके पहले ऊपर ऊपर से विचार करें कि संसार अनित्य है, इसमें कोई शरण नहीं है, कभी भी मृत्यु आ जाएगी, वो है सब विकल्प है, विकल्प आएगा और विकल्प की महिमा करेगा तो आत्मा की महिमा नहीं आएगा।
मृत्यु होता है कि जैसे अपने एक निश्चय किया है कि संसार में मेरे को दुख लगना चाहिए तो हम इधर आएंगे, प्रयास तो इसलिए फिर वो दुख लगने का पोजीशन को खोजता रहता है कि हमको जब दुख लगेगा तब इधर आएंगे, जबकि हर हमारे हर भाव में ये अवलोकन चालू होना चाहिए।
हाँ।
किसी सिचुएशन के लिए मेरे को बैठ के नहीं रहना चाहिए कि ये पोजीशन होगा तो ये होगा।
ये तो देखो, जिसको धर्म करना है उसको परिणमन बदलना है ना, हाँ? तो परिणमन क्या है जीवन में, तो पूरा जीवन बदलना है या अधूरा जीवन बदलना है, कि संस में बदलना है या पूरा बदलना है, तो पूरा हो तो पूरा का पूरा ही करना होना चाहिए। इसलिए जिसको अवलोकन करना है, कभी करना कभी नहीं करना, वो बात नहीं हो सकती, वो बात नहीं है, ऐसा नहीं। तो सतत प्रयास करना चाहिए, तभी उसकी धारा निरंतर चलेगी। एक द्रव दृष्टि प्रकाश में सुजानी जी के एक पत्र में एक बहुत अच्छा वचनामृत है कि आत्मार्थी जीव अल्पकालीन भावों का मूल्य नहीं आंकते, आत्मार्थी जीव अल्पकालीन भावों का मूल्य नहीं आंकते। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नित्य भाव है, इसका मूल्य क्या? दो भाव आया और चला गया, आया और चला गया, इसका कोई मूल्य नहीं है। जो साधक है, धर्मी है, वो तो अल्पकालीन शुद्ध पर्याय का भी मूल्य नहीं आंकते। तो तू अल्पकालीन शुद्ध भाव का मूल्य क्यों आंकते हो? ये भाव मुझे अच्छा आया, आज भक्ति में अच्छा भाव आया, आज पूजा में अच्छा भाव आया, आज शास्त्र साध्य में अच्छे अच्छे भाव आए। अल्पकालीन भावों का मूल्य आंकना चाहिए नहीं, ये बात है।
जिस भाव में आकुलता है, जिस भाव में दुख है, उसको अच्छा कैसे मानता है?
उसको अच्छा हाँ तो अज्ञान से मानता है। जो विभाव है, जिसमें आकुलता है, जिसमें दुख है, उसको कोई महिमा करता है वो तो अज्ञान से करता है।
उसमें साथ में परिवर्तन का हेतु है,
उसमें तो कोई समझदारी की बात नहीं रहती। पर्यूषण पर्व निमित्त अपना आत्म कल्याण करना, मुक्ति के मार्ग में जाना, वो पर्व है। भगवान महावीर स्वामी का ये शासन चल रहा है, वो जो हमारे 24 तीर्थंकर में अंतिम तीर्थाधिनाथ थे, तीर्थ के अधिनाथ बोले जाते हैं, इनकी परंपरा, उपदेश की परंपरा अब चल रही है। और उन्होंने क्या किया? मुक्ति का उपदेश दिया कि जीव जन्म मरण के चक्कर में से कैसे छूटे और अपना शाश्वत कल्याण कैसे करें, तो मार्ग भगवान ने बताया। और वही परंपरा से ज्ञानियों ने ये सब बात जन्म मरण को छूटने से लिए की है। तो जन्म मरण से छूटने के लिए बात है कि संसार की महिमा छोड़ो और आत्मस्वरूप चैतन्य की महिमा करो। दो महिमा एक साथ होगी नहीं। तो चैतन्य की महिमा पूर्वक विभावों की महिमा छूट जाए, अनित्य भावों की महिमा छूट जाए, नित्य स्वरूप की महिमा में अनित्यता की महिमा छूट जाए। ऐसे तो हम लोग अनित्यता पसंद नहीं करते, कोई भी चीज लेते हैं तो टिकाऊ लेते हैं या तकला भी लेते हैं,
हैं?
मकान बनाते तो मजबूत से मजबूत हमारा मकान होना चाहिए, कपड़ा भी हमारा अच्छे से अच्छा टिकाऊ होना चाहिए, अरे हमारी तावड़ी भी टिके वैसी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाली होनी चाहिए, छोटी से मोटी सब चीज हमको नित्यता वाली चाहिए, अनित्यता वाली चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा स्वरूप नित्य है। हमारा स्वरूप नित्य होने पर भी हम अनित्य पदार्थों का, अनित्य पर्यायों का मूल्यांकन करते हैं, उसको अच्छे गिनते हैं, तो वो हमारी भूल है।
स्वरूप कैसा है सर?
स्वरूप आत्मा का स्वरूप अनंत चैतन्य शक्तिमान है, अनंत आनंद स्वरूप है, ऐसे ऐसे अनंत अनंत गुण का तो खानी है, तो चैतन्य की महिमा मैंने वो चैतन्य स्वरूप ऐसा महिमावंत है उसको पहचान करके जिसको विभागों की महिमा छूट जाए, चैतन्य की महिमा आए और विभाग की महिमा रहे ऐसा कभी बन सकता
नहीं है।
और चैतन्य की कोई अपूर्वता लगे, क्या लगे, चैतन्य की कोई
अपूर्वता
लगे कि ऐसा हमारा स्वरूप कभी हमने देखा नहीं समझा नहीं, तो लगे विचार में आए उतनी बात नहीं लिया है, लगे तो संसार की महिमा छूट जाएगी। तो संसार की महिमा लगती थी, संसार के पदार्थ की महिमा लगती थी, वो छूट जाएगी, तो पूरा निर्णय बदल जाता है, पूरा निर्णय बदल जाता है, तब महिमा में बड़ा फेरफार हो जाता है। तो फिर स्वरूप की महिमा आती है तो स्वरूप का रस आएगा, चैतन्य का रस आएगा, पुण्य पाप और उसके फल का रस छूट जाएगा और स्वरूप का रस से आत्मरस बढ़ने से आत्मभाव का अनुभव होगा, वो आत्मानुभूति है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आनंद आदि
प्रकट होगा,
आत्मा के अपूर्व भाव प्रकट होंगे। और वह चैतन्य के समीप आता है, चैतन्य की कोई अपूर्वता लगने से पहले कुछ भी करे संसार की महिमा रहे और कुछ भी करे स्वरूप की समीपता होने वाली नहीं है। चैतन्य तो कोई अपूर्व वस्तु है, आत्मा जो चैतन्य स्वरूप है वो तो कोई अपूर्व वस्तु है, वो आत्मा बार बार बोलते हैं इसलिए कोई सामान्य वस्तु है ऐसी बात
नहीं
है, कोई अपूर्व वस्तु है चैतन्य, तो कोई अपूर्व वस्तु है, उसकी पहचान करनी चाहिए और पहचान होगी तो महिमा भी आएगी, तो उसकी पहचान करके महिमा करनी चाहिए ऐसा उद्देश्य है। बिना पहचान कभी महिमा आती नहीं है, और संन्यास है कि गुरु ने कहा, शास्त्र ने कहा, इसलिए महिमा करते हैं, वो सही महिमा नहीं है। महिमा करने का आदेश उपदेश मिला है इसलिए महिमा करते हैं, वो भी सही महिमा नहीं है। सच्ची महिमा तो पहचान से ही आती है, पहचान से मूल्यांकन होता है और महिमा रोकी नहीं जा सके ऐसी आती है। कैसी महिमा आती है, इस महिमा के परिणाम को खुद ही रोक सके नहीं, उतना ही नहीं, कोई अनुकूलता या कोई प्रतिकूलता, चैतन्य की महिमा जिसको पहचान पूर्वक आई उसकी महिमा को रोक सकेगा नहीं, सब गौण हो जाएगा, क्योंकि ये तो पुण्य पाप का फल है, उसको जिसको पुण्य पाप की महिमा गई उसको पुण्य पाप के फल की महिमा कहां रही, तो कोई महिमा नहीं है उसको।
चार सौ सोलह
हिंदी में 188 पाना है, 188 पाना पेज, बहुत अच्छा वचनामृत है ये। भाव भ्रमण चलता रहे ऐसे भाव में यह भाव व्यतीत होने देना योग्य
नहीं है।
देखो क्या कहा, भाव भ्रमण का नाश हो जाए ऐसा कोई अपूर्व परिणमन हमें चालू कर देना चाहिए, वरना भव भ्रमण चलता रहे ऐसा भाव चल रहा है, भव भ्रमण चालू रहे ऐसा ही भाव चल रहा है। जो अपनत्व होता है, स्वरूप में अपनत्व नहीं होकर के स्वरूप को छोड़कर अन्य पदार्थ में अन्य भाव में अपनत्व होता है, भव भ्रमण चालू रह जाएगा। ऐसे भाव में यह भाव व्यतीत हो, पूरा भाव पूरा हो जाए, ऐसा होने देना योग्य नहीं है। क्या कहते हैं, जो भी आत्मार्थी है, मोक्षार्थी है, उनको ऐसे परिणाम आता है, उनको ऐसा भाव होता है कि अरे भव भ्रमण चालू रहे, पूरा भव मेरा भव में कुछ हिस्सा तो चला गया, मेरे इस मनुष्य भव का कुछ हिस्सा तो चला गया। अब ऐसे ही परिणाम चलते रहेंगे तो भव भ्रमण तो चालू रह जाएगा, तो ऐसे पूरा भव व्यतीत हो जाए ये होने देना योग्य नहीं है। ऐसा कुछ न कुछ उपाय मुझे कर लेना ही चाहिए, किसी कीमत पे कर लेना चाहिए। ऐसा भाव आत्मार्थी को मोक्षार्थी को आता है। क्या आता है कि मेरे तो भाव के अभाव का प्रयत्न करने लिए यह भाव है, वर्तमान मनुष्य भाव आया है, लगता है ऐसा। क्या सिर्फ सिर्फ ऊपर ऊपर से विकल्प होता है वो बात नहीं है, मोक्षार्थी को अंदर में ऐसा लगता है कि भाव के अभाव का पुरुषार्थ करने के लिए ये भाव मुझे मिला है, बहुत अच्छी तक मिल गई है, बहुत अच्छा अवसर आया है कि भव भ्रमण का अभाव कर सकूं, ऐसा मुझे अवसर मिला है, उनको ऐसा लगता है। तो इनके परिणाम और कहीं जगह चौंपेंगे नहीं, लगेंगे नहीं, कहीं बनने लगेगा, चिंता बैठ गई, भव भ्रमण का अभाव करने की चिंता बैठ गई कि इसका उपाय मुझे करना है, जैसे भव चला जाता है। भाव के अभाव का प्रयत्न करने के लिए यह भव है, भव भ्रमण कितने दुखों से भरा है उसका गंभीरता से विचार तो कर, देखो कैसा अच्छा रचना मिलता है। ये बहुत प्रारंभ में ये होना चाहिए, यहां से प्रारंभ होता है मुमुक्षुता का। अगर ये इस प्रकार के परिणाम नहीं आए तो कुछ भी करते हैं सब ऊपर ऊपर से चलता है। भव भ्रमण कितने दुखों से भरा है उसका गंभीरता से विचार तो कर, वास्तविकता से उसका विचार करके क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होता है। एक बहुत बड़ा तूफान चलता है विश्व में, मंटो साइक्लोन, जीव कहां मरता है कहां जन्मता है कोई इसका हिसाब किताब रख सके नहीं, कहीं जाता है कहीं जाके पड़ता है। ये भव भ्रमण कितने भयंकर दुखों से भरा है उसका गंभीरता से विचार तो कर, गंभीरता से विचार कर। जैसे एक मरण का कारण दिखता है कि कैंसर हुआ, अरे शंका भी पड़ी, कितनी गंभीरता आती है, इससे अनंत गुणी गंभीरता आनी चाहिए।
भव भ्रमण की चिंता जो आप,
हाँ ये बात आई, ये बात आई, वो तो सभी ज्ञानियों में आएगा। वहां श्रीमद रामचंद्र वचनामृत में 86 नंबर का पत्र और 195 नंबर का पत्र ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी बात है। सभी ज्ञानियों का एक ही अभिप्राय होता है, भव भ्रमण कितने दुखों से भरा है उसका गंभीरता से विचार तो कर। नरक के भयंकर दुखों में एक क्षण निकलना भी असह्य लगता है क्या? एक एक क्षण भय जैसे लगती है माता, इतना दुख है, इतना दुख है, इतनी पीड़ा है कि एक क्षण बहुत लंबी दिखती है, ऐसी हालत है। तो असह्य परिस्थिति है वहां, सागरोपम काल की आयु कैसे कटी होगी, वहां सागरोपम का आयुष वहां बिताया है, कितना दुख भोग करके बिताया है जिसका कोई वर्णन कर सके, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। गुरुदेव दृष्टांत देते थे कि वहां गर्मी कितनी होती है कि एक लाख टन का गोला हो तब लोहे का तो पानी की तरह पिघल जाए क्षण मात्र में, इतनी गर्मी है वहां। इस दिन में कितना दुख भोगा होगा, क्या क्या है। ऐसा नहीं है कि वहां परिभ्रमण में तो स्थान नहीं मिला है, वो बात कोई स्थान बाकी नहीं रखा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव पंच परावर्तन है, सब जगह जाता के आया है। नरक के दुख सुने जाए ऐसे नहीं है, सुन सकेंगे नहीं, इतना दुख है कि वहां जन्म लेते हैं जो भी नरक के जीव का जन्म होता है वो बिल होता है, बिल मैंने क्या जन्म का स्थान, तो वो कुंभ जैसा होता है जिसका पेट बड़ा बड़ा होता है ना, और उसका मुंह है वो सांकड़ा, तो उसमें जो जन्म होता है उसमें शरीर की आकृति तो बड़ी हो जाती है पर निकलने की जगह नहीं है, मुंह सांकड़ा है। फिर क्या है कि उसको खींच करके निकालते हैं, दूसरे नारकी हुए हैं उसको खींचते हैं, उतना त्रास होता है उनको, पर उतनी वो बूंद मारता है त्रास के हिसाब से, बूंद लगाता है इधर को, वो बूंद सुने तो सुन करके मर जाए इतना दुखदायी आवाज होता है कि उसको सुनने वाला मर जाए, दुखी होगा ही नहीं, मर जाए, यहां तो मर जाए, इतना दुख वहां होता है जन्म के काल में। फिर सारे सागरोपम के आयु में दुख 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 बहुत दुख होता है। स्वरूप को कुछ नहीं अवस्था में होता है, पर्याय में होता है, पर्याय में एकत्र है, पूरा पूरा वहां आ जाता है। अभी देखो ना, इंजेक्शन की सौ एक जगह स्पर्श करती है, कितनी जगह में, उतना पॉइंट में, लेकिन पूरा का पूरा वहां आ जाता है कि नहीं आ जाता है, ये मुझे लगी मेरे में आई,
बस भी नहीं होता आत्मा को,
आत्मा को क्या शरीर को भी नहीं है वहां तो, हाँ फिर भी कल्पना कैसे होती कि मेरे मुझे मुझे सोई सोई लगी तो पूरा आत्मा वहां आ जाता है। ऐसा एक समय की पर्याय में, दुख की पर्याय में पूरा पूरा अनुभव कर लेता है, तो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत दुखी होता है। इससे भी अनंत गुना है नरक का दुख, तो कोई वाणी में आ ही नहीं सकता, ये तो एक अनुभव की चीज होती है, वाणी में कैसे आएगी। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा मौका मिला है, मनुष्य भव मिला है पर सत्य धर्म मिला है, और इससे छूटने के उपाय जो है वो भी पूरा पूरा एकदम सच्चा मिला है। अब जी नहीं करे और दूसरा कार्य करे तो इसकी मूर्खता का भी कोई ठिकाना, कोई हद नहीं है, वो भी बहुत मूर्खता है। क्योंकि ऐसा मौका जीव को बार बार
नहीं मिलता,
बार बार नहीं मिलता।
देखो
ऐसे महापुरुष के वचन ऐसे ज्ञानी मिले, बहुत सब अवसर आ चुका है, सब अवसर आ चुका है। इसका कारण है परिणमन का ये सिद्धांत है, परिणमन का सिद्धांत है कि दूसरे का वेदना का परिणमन देखेगा ना तो उसको वेदना चालू हो जाएगी। ये क्या, ये रास्ते में पिल्लू है, बकरी का बच्चा है, तो पीड़ा से वो उनको दर्द बाहर आता है, उनकी भाषा में वो रोता है, तो देखने वाले को क्या होता है, दर्द होता है कि नहीं होता है, कोई सगा संबंधी थोड़ा है। फिर भी किसी का भी वेदना का परिणाम देखो अपने विदुख हो जाएगा। ऐसे ज्ञानी का वेदन का परिणाम देखो तो ज्ञान वेदन आने लगेगा, क्योंकि परिणमन देखने वाले को वैसा ही परिणमन होने का सिद्धांत है। इसलिए जिसने ज्ञानी के परिणमन को देखा वो ज्ञानी हो जाता है, ऐसा है। वही परिणमन देखा था सुबह ने, गुरुदेव के परिणमन को देख लिया। राग और ज्ञान भिन्न है तो परिणम तो ये देखा कि राग भिन्न है ज्ञान भिन्न है, परिणमन देख लिया, उनके परिणमन चालू हो गया अल्पकाल में। मैं हाँ दर्शन में वो दर्शन करने का, परिणमन का दर्शन करने का है, शरीर का दर्शन करना नहीं है, वो तो सब करते हैं, कोई फायदा नहीं है इसका, कोई फायदा नहीं है। हाँ परिणमन की साक्षात प्रतिमा होती है, यानी को अंतर परिणमन की प्रतिमा होती है, तो देखे परिणमन आ जाएगा। और यही सत्संग का रहस्य है, दर्शन का सत्संग का रहस्य क्या है, परिणमन देखकर परिणमन को उत्पन्न करना, वही उसका रहस्य है, वरना क्यों जाए, कोई पुण्य बांधने का काम नहीं है वो। नरक के दुख सुने जाए ऐसे नहीं है, सुन सकते नहीं ऐसे, पैर में कांटा लगने जितना दुख भी तुझ से सहा नहीं जाता, एक पैर में कांटा लग जाए तो भी तुमको सहा नहीं जाता, निकाल दो उनको ठीक कर दो तो फिर जिसके गर्भ में उससे अनंत अनंत गुने दुख पड़े हैं, ऐसे मिथ्यात्व को छोड़ने का उद्यम तू क्यों नहीं करता। देखो क्या बात किया, पुण्य पाप की बात किया कि मिथ्यात्व किया, पुण्य पाप की बात नहीं किया, तो पाप के फल में तुमको दुख होगा इसलिए पाप छोड़ दो और पुण्य कर लो, ऐसा नहीं था। क्यों, ये भी क्षणिक है, पुण्य करोगे पुण्य का फल आएगा, पर उस फल भोगते वक्त क्या होगा, पाप होगा, तो पुण्य रहने वाला नहीं है, पाप होने वाला ही है। इसलिए कहते हैं कि तुम जिसके गर्भ में अनंत अनंत गुणे दुख पड़े हैं, ऐसे मिथ्यात्व को छोड़ने का उद्यम माने पुरुषार्थ तुम क्यों नहीं करता।
नरक से भी अनंत गुणे दुख,
मिथ्यात्व के गर्भ में अनंत अनंत गुणे दुख पड़े हैं, एक मिथ्यात्व के गर्भ में अनंत नरक निगोद के भाव पड़े हैं, कितने अनंत नरक निगोद के भाव पड़े हैं, उसको छेदो तुम, पाप को छेदकर पुण्य में आओ, ऐसी बात तुम मत करो, ऐसा कहते हैं। ऐसा बड़ा पाप तो मिटाओ ना, मूल को जड़ से निकालो ना। पाप की जड़ तो मिथ्यात्मा में है, जड़ मैंने मूल। पाप की जड़ कहाँ है? मिथ्यात्मा। ऊपर ऊपर से पाप को काटो, अंदर से पाप निकलता रहेगा, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। इसलिए जड़ से काटो, मिथ्यात्मक रूपी जड़ से उसको काट दो।
मैं इसका पिता, ये मेरा पुत्र, इस भाव में ये।
हाँ ठीक है चलो। मैं इस लड़के का बाप हूँ, पिता हूँ, ये मेरा पुत्र है, उसमें क्या पड़ा है? अनंत नरक निवेद के भाव पड़े हैं। ऐसी बात है, अब करना क्या? नहीं करना, सामने रख करके प्रयोग करना है, देखना है कि क्या लगता है, मेरा लगता है कि मेरा नहीं लगता है। सामने खड़ा रख करके देख लेना मेरे परिणाम में क्या हो रहा है, मेरा पर मेरा लगता है या पराया लगता है। ये प्रयोग करने की चीज है, वरना ये मेरापने में अनंत नरक निरोध के भाव पड़े हैं, मन जान लेना। इसको छोड़ने का उद्यम तू क्यों नहीं करता? इसको छोड़ने का पुरुषार्थ तुम क्यों नहीं करता? उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करो, भले तुमको कठिन लगे, भले तुमको कठिन लगे, लेकिन करना ही है उसको, तो ये होगा ही होगा। जिसको नहीं करना है उसका कोई उपाय नहीं है। गफलत में क्यों रहता है? ठीक है, उद्यम नहीं करके तुम धोखा में क्यों रहता है? पुरुषार्थ क्यों तुम तेरा नहीं चलता है? इस समय क्यों निकलता है तेरा बिना पुरुषार्थ वाला? गफलत में क्यों रहता है? ऐसा उत्तम योग पुनः कब मिलेगा? अभी जो अवसर आया है, ऐसा उत्तम अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। जिसने अवसर मिलने पर इस अच्छे उत्तम अवसर की उपेक्षा की, वकील में रहा मैंने, उपेक्षा की, कुदरत उसको उस अवसर में बार बार आने देगी? क्योंकि खुद ने उपेक्षा किया है, तो कुदरत ऐसे ऐसी परिस्थिति में रख लेगी कि ऐसा अवसर उसको अनंत काल मिले नहीं। वजन रहता है ना संसार के उदय के कार्यों में, वजन रहता है, तो उनका जो सावधानी है वो वहीं रहा करती है, उसका पुरुषार्थ चलेगा नहीं। समझने पर भी पुरुषार्थ नहीं चलेगा, क्यों? कि चेंज ऑफ प्रायोरिटी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी में आत्मकल्याण आना चाहिए, और संसार के सभी कार्य जिम्मेवारी का कुछ भी समझा जाए कि ये तो जिम्मेवारी का काम है, तो लास्ट प्रायोरिटी में रहना चाहिए। कितने? लास्ट प्रायोरिटी में, और फर्स्ट प्रायोरिटी में अपना आत्मकल्याण रहना चाहिए, तभी काम होगा। होगा तो तभी होगा, इसके पहले होने वाला है नहीं, समझ लेना। ऐसा उत्तम योग पुनः कब मिलेगा? तू मिथ्या तो छोड़ने के लिए जी जान से प्रयत्न कर, गुजराती में सुन लिखो, मरण में प्रयत्न, हिंदी में जी जान से प्रयत्न कर। एम से तू मिथ्या तो छोड़ने के लिए मरण को गौण करके भी प्रयत्न कर, मर करके भी ये काम कर ले, ऐसा है कहने का मतलब है। मैंने पूरी ताकत से वो काम कर ले, तुम मिथ्या तो छोड़ने के लिए प्रयत्न कर, अर्थात साता असाता से भिन्न, साता असाता को मत गिन तुम, तथा आकुलता में शुभाशुभ भावों से भी भिन्न, उसकी भी कीमत छोड़ दे। साता असाता का बहाना छोड़ दे, और पुण्य पाप के भावों के भावों का भी महत्व तुम छोड़ दे, उससे भिन्न ऐसे निराकुल नायक स्वभाव को अनुभवने का प्रबल पुरुषार्थ कर। तेरा स्वरूप है तो साता असाता से भिन्न है और शुभ अशुभ भावों से भी भिन्न है बिल्कुल। ऐसे स्वरूप को अनुभवने का प्रबल तेज पुरुषार्थ कर, जोर से पुरुषार्थ कर। ढीला रहने से काम नहीं होगा, शिथिलता से कोई काम होने वाला नहीं है। शिथिलता से बात ही मत करना, क्या धीरे धीरे करूंगा, आस्ते आस्ते होऊंगा, उतना काल तो मुझे लगेगा, तो नहीं अभी करना है, फिर काल लगेगा अलग बात है। अभिप्राय में तो शीघ्राति शीघ्र मुझे काम करना है, ऐसा ही आना चाहिए। तो इतना बड़ा अचीवमेंट है इसका, अनंत सुख प्राप्त होता है, अनंत दुख मिटता है, तो इसके लिए देरी क्यों, किस कारण से देरी करना है, कौन सा ऐसा महत्व का काम है जो इससे भी बड़ा हो, ऐसा कोई काम जगत में
नहीं
है ही नहीं। कैसे पता चला काललब्धि नहीं पकी? हाँ, पानी का प्यास हो गए तब काललब्धि याद आती है, हाँ? काललब्धि आई है तब पानी मिलेगा। ये काललब्धि की बात अवलंबन लेने के लिए नहीं है। अगर काललब्धि का अवलंबन लिया तो पुरुषार्थहीन होकर के स्वच्छंद करेगा। ये काललब्धि की बात का स्वच्छंद हो गया,
भवभ्रमण का भाव विद्यमान हो प्रभु, उसमें दुख है, अनंत दुख पड़ा हुआ है, उसके अनुकूल ना हो
ना, बहुत बड़ा अपराध है।
बाद में करूंगा।
हाँ, वो अभिप्राय की भूल है, बहुत बड़े बड़ा अपराध है वो। अभिप्राय में से तो पहले निकलना चाहिए, ये बात है, फिर परिणमन छूटेगा। इसके पहले अभिप्राय फिरे बिना परिणमन भी फिरेगा। हाँ, कोई नहीं, बहुत बहुत अच्छे से अच्छा योग है एकदम। अभी काम करे तो धन्यवाद है, नहीं करे इसका तो कोई इलाज नहीं है। यही इस भाव में करने योग्य है। क्या बोला? यही इस भाव में प्रबल पुरुषार्थ करना, यही इस भाव में करने योग्य है। इसके इसलिए ये भाव मुझे मिला है, संसार बढ़ाने के लिए ये भाव मिला है ऐसा नहीं लगना चाहिए। संसार मिटाने के लिए मुझे भाव मिला है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। महान कार्य के लिए ये भाव मिला है, कोई छोटा छोटा खाना पीना और संसार चलाना, ये तो सब करते हैं, ये तो पशु भी करते हैं, इससे क्या फायदा? तो उसका मूल्यांकन आए कोई काम होगा, मूल्यांकन नहीं आएगा तो ये भाव चला जाएगा।
देव जय हो परम कृपा ऋषि नाम गुरुदेव नो देव।